وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. یہ نکاح کی تقریب ہے. الحمدللہ ہمارے سلمان میاں کا نکاح ہے, اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی. ویسے بظاہر اس آیت کا نکاح سے جوڑ نظر نہیں آتا, لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو تین آیتیں پڑھا کرتے تھے ان کا بھی بظاہر نکاح سے کوئی تعلق نہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو ایک تو یہ آیت پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت پڑھتے تھے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تیسری آیت پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ تین آیتیں پڑھتے تھے. بظاہر تو ان کا نکاح سے تعلق نہیں, لیکن ایک چیز جو ان تینوں آیتوں میں قدر مشترک ہے وہ تقویٰ ہے. تو گویا یہ اشارہ ہے کہ جس کو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا اس کی نکاح کے بعد کی زندگی درست طور پر صحیح طور پہ نہیں گزر سکتی. اور یہ جو آیت ہے یہ پورے دہر کی آیت ہے. وَيُوْ قَيْمُونَ قَحَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو اور یتیم بچوں کو اور قیدیوں کو, اور وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. یا زبان سے کہہ دیتے ہیں یا کھانا کھلاتے وقت دل میں ان کے یہ جذبہ ہوتا ہے, یا زبان سے کہہ دیتے ہیں یا دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللہ کے لیے کھلانے کی علامت کیا ہے؟ جب کوئی بھی نیکی کسی مخلوق کے ساتھ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو اس کی یہ دو علامتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی. بس اس کو سمجھ لیجئے تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. کسی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی, کوئی بھلائی, کوئی اچھائی کی جائے, اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو اس کی دو علامتیں, اگر یہ دو علامتیں نہیں ہیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. چاہے زبان سے کہتا رہے کوئی کہ ہاں جی ہم نے تو اللہ کے لیے کیا. دو علامتیں یہ ہیں, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, نہ تو ہم اس کی تم سے جزا چاہتے ہیں, یہ جو ہم نے نیکی بھلائی احسان کیا اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے, اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ تم اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو. شکر گزاری بھی ہمیں مطلوب ہے. بس یہ دو, یہ جیسے ہمارے معاشرے میں ये बात राइज है कि हमने तो ये किया और उसने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। भाई आपने ये किया था तो किसके लिए किया था? अगर अल्लाह के लिए किया तो आप शुक्रिया के तलबगार क्यों हैं? और बदला, ये जो आजकल लिखा जाता है ना शादियों में, इतने पैसे खुलाने दिए, इतने पैसे खुलाने दिए, बाकायदा एक जो वसूली हो रही होती है और एक लिखने वाला खड़ा हुआ होता है, ये गालिबन इसलिए लिखा जाता है कि इनके यहां कोई मौका आएगा तो हम इससे इतना देंगे या इससे ज्यादा देंगे, जिसको नेवता कहते हैं। और उलमा से पूछ सकते हैं कि ये इसका हुक्म क्या है और कितना सख्त मामला है इसका। अगर इसी नियम से किया जा रहा है कि हम इससे ज्यादा दें तो ये तो सूद का हुक्म होगा। तो ला नुरी तो मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा। मखलूक देखिए, निकाह में भी यही होता है, एक एक लड़की और एक लड़के का निकाह पढ़ा दिया जाता है, एक घर आबाद हो जाता है। अब अगर ये अल्लाह के लिए ताल्लुक है तो ना तो बदले की ख्वाहिश हो, किसी भलाई के बदले में कोई बदला कोई जज़ा ना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, और ना ही शुक्रिया की ख्वाहिश हो। हमारा दीन तो इतना मुकम्मल है, इतना मुकम्मल है कि एहसान भलाई और नेकी करने वाले से ये कहा जा रहा है कि देखो तुम बदले की और शुक्रिया की ख्वाहिश मत रखो, और जिस पर जिसके साथ भलाई की जा रही है और एहसान किया जा रहा है उससे ये कहा जा रहा है कि देखो अल जज़ा व एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला भलाई का बदला तो भलाई है। लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया, उससे ये कहा जा रहा है दोनों तरफ में कैसी कैसा तवाज़ुन कायम करना है। एहसान करने वाले से ये कहा जा रहा है कि तुम बदले की और शुक्रिया की दोनों चीजों की तवक्को मत रखो अगर तुमने अल्लाह के लिए किया, ये एहसान ये भलाई, और जिसके साथ भलाई की जा रही है उससे ये कहा जा रहा है कि देखो अगर तुम इसके शुक्रगुजार ना बने तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार भी नहीं बने, और कोई जो जो तुमसे हो सके इसका बदला भी दो। ये तवाज़ुन अगर कायम हो जाए तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। इसीलिए झगड़े होते हैं। ये जो इस आयत में उसूल बयान किया गया वो ये है, खुलासा उसका ये है कि आप मखलूक से तवक्को ना रखें, मखलूक से तवक्कोआत वाबस्ता ना कीजिए। तवक्कोआत रखेंगे तो तवक्को रखना इस बात की अलामत है, इसमें शायबा इस बात का है कि हमने अपने आप को किसी काबिल समझा, हमने एक कीमत लगा ली अपनी, उसके मुताबिक अगर हमारे साथ बर्ताव नहीं हुआ तो हम बुरा मानते कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, यही तवक्को है। तो इसमें इस आयत में सबक यह दिया गया कि मखलूक से तवक्कोआत ना रखें। इसलिए बीवी को भी हुक्म दिया गया, बीवी के लिए भी ये जो जो अच्छी बीवी की अलामत यही बयान की गई कि अपने शौहर की खिदमत करें, लेकिन शौहर को ये बताया गया कि देखो अगर ये खाना ना दे तो इसकी जिम्मेदारी है, यहां तक कि बच्चों को दूध ना पिलाए तो भी इसकी जिम्मेदारी है। तो दोनों तरफ तवाज़ुन को कायम रखा गया है। और याद रखिएगा घर जो चलता है ना, घर ये जाब्ते से नहीं चलता, घर चलता है राब्ते से, और घर चलता है दो चीजें हैं, देखिए जरा गौर से सुनिएगा। आजकल जो उलमा से पूछिए तलाक के मुताबिक कितने मसाइल आ रहे हैं, माशरा टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ये वही है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो आयात पढ़ रहे हैं तक़वा की, और गोया ये इशारा है कि अपना जो घर नया बसा रहे हो اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی. تو گھر جو ہے نا وہ راستے سے نہیں چلتا, راستے سے چلتا ہے, اور راستے والے کو راستہ ملتا ہے, راستے والے کو راستہ ملتا ہے. اگر آپ نے دو باورچی رکھے 9 بجے سے 8 بجے تک, شام 8 بجے تک, 5 بجے تک ان کی نوکری ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ایک باورچی آپ کا کام بھی کر دیتا ہے, آپ کے سر میں تیل بھی لگا دیتا ہے, اور آپ کے باہر بازار کے کام بھی کر دیتا ہے, دوسرے یہی کام دوسرے سے کہیں دوسرے باورچی سے ہوتا ہے گا, میری تو آپ سے بات ہوئی ہے کھانا پکانے, میں کھانا پکاؤں گا اور میں چلا جاؤں, مجھ سے یہ کام نہ کہیں کیونکہ یہ کام طے نہیں ہو, وہ ضابطے میں چل رہا ہے. اب راستے اور ضابطے کا فرق یہ ہے کہ اگر اس مالک سر میں تیل لگانے والے اور جسمانی خدمت کر دینے والے اور باہر بازار کا کام کر دینے والے باورچی سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ راستے سے کام لیں گے, ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ اور کام بھی تو کرتا ہے, بھائی اس کو معاف کر دوں, اور بلکہ کبھی کبھی اس کو چپکے سے بلا کے تنخواہ کے علاوہ بھی 100-150 روپے دے دیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ یہ راستے کی وجہ سے, اس نے راستے پہ نہیں چلا, راستے پر چلا. راستہ تو یہ تھا کہ وہ 9 بجے سے 5 بجے تک وہ اس کو کھانا پکانا ہے اور جانا ہے بس ختم, لیکن جب اس سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ اس کو معاف بھی کریں گے, اس کو بلا کر تنخواہ کے علاوہ پیسے بھی دیں گے اور لوگوں سے اس کی تعریف بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور یہ دوسرا جو ضابطے پہ چل رہا ہے جو یہ کہتا ہے بھائی میرا کام یہ نہیں کام, وہ اگر مرچ تیز کر دے, مسالہ زیادہ کر دے, نمک زیادہ ڈال دے کھانے میں, تو پھر اس کو راستہ ملے گا کہ تجھ سے یہ کہا, یہ بات تو نہیں تھی کہے کہ نمک بھی زیادہ کر دے گا, مرچیں بھی زیادہ ڈالے گا, جو کھانا ہمیں مطلوب ہے ویسا کھانا یہ طے ہوا تھا, اب اس کو سزا دی جائے گی اور مناسب اس پر معاوضہ کیا جائے گا. تو یاد رکھیے گا راستے پر چلنے والے کو راستہ ملتا ہے, اور یہی سے سمجھ نہیں آیا نوافل کی حیثیت کیا ہے. نوافل کی حیثیت جن کو شاید ہم کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, یہ وہ ایسے ہی ہے, نوافل پڑھنے والا, نوافل کرنے والا, اس کی مثال دوسرے باورچی کی طرح ہے جو راستے پر چل رہا ہوں, اور ایک جو فرض واجب پورا کر رہا ہے اس کو ضابطہ ملے گا. ظالم یہ جو تمہیں عشاء کی نماز پڑھی ہے تم یہ غلطی کیوں کی, اور جو راستے پہ چل رہا ہے فرض واجب کے علاوہ سنت موقعہ کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیں گے. تو یہ اور بھی تو کرتا ہے تو چھوڑو, اور اس کو اور بھی نعمتیں دیں گے چپتے چپتے. تو گھر چلتا ہے راستے سے نہیں, راستے سے, کہ بھائی شریعت میں تو یہ قانون ہے یہ قانون نا, یہ نہیں, راستے سے گھر چلے گا. اور دوسری بات جو نقطۂ نظر بدلنا پڑے گا, آپ ہمارے گھر جو ٹوٹتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ, بچی کے ماں باپ دو چیزیں ہیں یہاں پر, ایک تو یہ ہے کہ بچی کا مفاد دیکھنا اور ایک یہ ہے کہ بچی کے گھر کا مفاد دیکھنا. بچی کے گھر کا مفاد کتنا ہے, تو جو ماں باپ بچی کا مفاد دیکھیں گے ان کے گھر ٹوٹیں گے, ایک نہ ایک دن ان کی بچی ان کے گھر واپس آ جائے گی, اور جو ماں باپ اس کو دیکھیں گے کہ بچی کے گھر کا مفاد کس چیز میں, وہ قربانی دینے پر بھی آمادہ ہو جائے, اور ایسے ماں باپ کے بچیوں کے گھر بسے رہے. آج نقطۂ نظر بدل گیا, یہ دیکھا جاتا ہے بچی کا مفاد کس میں ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا بچی کے گھر کا مفاد کس میں ہے, یہ نہیں دیکھتے بچی کا مفاد کس میں ہے, یہ دیکھتے, اور یہ غلط, یہ نقطۂ نظر غلط, جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. اور لڑائیاں بھی کیوں ہوتی ہیں, کسی سے لڑائی سے بچنے کے لیے, یاد رکھیے گا, کسی سے لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا, تم بھی کرو تم بھی بدلا لو اچھی طریقے سے. اب یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں, वो कह रहे अंदर से आवाज आ रही है नहीं करो, अब ये समझा रहे नहीं मैं नहीं करूंगा। ये अपने आप से लड़ना पड़ता है, किसी से लड़ाई से बचने के लिए, किसी से झगड़े से बचने के लिए, किसी से इख्तलाफ से बचने के लिए अपने आप से इख्तलाफ करना पड़ता है। बसा औकात लड़ाई से बचने के लिए अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, झगड़े से बचने के लिए अपने आप से झगड़ा करना पड़ता है, और क्योंकि हम ये झगड़ा नहीं कर रहे इसलिए हमारे झगड़े हो रहे हैं। अरे सोचे तो सही, हम किस इन लोगों के पैरोकार हैं, किन लोगों के नाम लेने वाले हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने हजरत अबू दरदा से फरमाया, भाई ये खुला घर है कबीला बनू लैद का एक घर था, जाओ तुम इस घर में रिश्ते की मेरी बात चला दो। वो गए रिश्ता लेकर, दोनों बड़े दर्जे के साथी, हजरत सलमान फारसी बहुत बड़े साहबी, हजरत अबू दरदा बहुत बड़े साहबी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने गोया भेजा अपनी वकील बना करके, जाओ मेरी बात कर लो रिश्ते की। वो जब उस घर में पहुंचे, बनू लैद का घर था, कबीला है बनू लैद उसका घर था, उनसे ताल्लुक था, तो उन्होंने जाके हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला के फजाइल बताने शुरू किए, भाई ऐसे आदमी है किस तरह ये ईमानदार है और फारिस से चले और इतनी इतनी इन्होंने कुर्बानियां दी, फजाइल बयान करके उनकी खूब तारीफ की, और फिर ये कहा आपकी बच्ची से रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ये सारी बात सुनकर ये कहा कि भाई उनसे तो हम शादी नहीं कर सकते, आपसे कर लेते। जब हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने ये देखा कि ये तो उन पर आमादा ही नहीं है शादी करने पर, और अच्छी खासी तमीज भी बांधी थी, लेकिन उसके बावजूद वो आमादा नहीं हुए, तो उन्होंने फरमाया अच्छा भाई आप मुझसे कर रहे हैं तो मुझसे कर दीजिए। वहीं निकाह हो गया और बाहर आए, ये बाहर मुंतजिर थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला, और शायद यही तवक्को रखते होंगे कि कुछ खुशखबरी मिलेगी। तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने आकर ये बात कही कि अंदर जो बात हुई है वो बताते हुए आपको शर्म आ रही है, वो बात बताते हुए मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। फिर बात भी बताई कि बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप उनसे तो हम नहीं निकाह कर सकते, तुमसे कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया। फरमाया ये बात सुन के फरमाया शर्म तो मुझे आपसे आनी चाहिए, शर्म तो मुझे आनी चाहिए आपसे, आपको क्यों आ रही है शर्म। और उसकी वजह यह बताई कि मैं एक ऐसी लड़की से पैगाम भेज रहा था रिश्ते का जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखी हुई, तो शर्म तो मुझे, और फिर जरिया भी आपको ही बना रहा हूं, जरिया भी आपको बना रहा हूं, और एक ऐसी लड़की से पैगाम भेज रहा हूं जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखी हुई थी, और आप ही को भेज रहा हूं मैं उसके रिश्ते के लिए, तो शर्म तो मुझे आनी चाहिए आपसे ना कि आपको मुझसे। ये है वो तकवा, ये है वो तकवा जिसका जिस पर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के घरों की बुनियाद रखी, और ये नहीं होगा तो झगड़े होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि हम जैसा अगर कोई होता तो उस वक्त क्या हालत होती कि गालिब ये कलीमा होता है, तूने मैंने तो तुझे भेजा था कितनी और तू क्या करके आया है, और तूने मेरे साथ ये किया, तो किसी से झगड़े से बचने के लिए अपने आप से झगड़ना पड़ता है पहले, तब आप झगड़े से बच सकते हैं, तब आप लड़ाई से अपने आप से लड़िए, तब आप लड़ाई से बच सकते हैं। और चूंकि हमने ये लड़ना और झगड़ना अपने आप से छोड़ दिया है इसलिए हमारे झगड़े होते हैं, जरा जरा की बात से पत्न भारत गई तक नौबत पहुंच जाती। इसलिए इस आयत में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यह बहुत बड़ा उसूल बयान फरमाया है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, ये तवक्को ना रख, मखलूक से तवक्को ना रख, ये तवक्कोआत माबस्ता करना ये बहुत बड़ी गलती है, इसकी वजह से खराबियां लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और घर टूटते हैं, फिर माशरा मुंतशिर होता है, माशरे में इंतजार पैदा होता है। ये तो अगर अगर ये उलमाए किराम हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, अहलुल्लाह हैं, उनकी बरकत है, वरना वो ये तकवा ना हो तो बात कहां तक पहुंचती है। जो जैसे वो यूरोप के किसी मुल्क का नाम तो मुझे याद नहीं, बार यूरोप के किसी मुल्क में ये ऐसा हुआ कि, और ऐसा होता रहता है वहां, एक औरत ने मुकदमा दायर किया अदालत में कि मेरा बेटा, इसके पास एक कुत्ता है, रोजाना ये अपने कुत्ते को नहलाता है, धुलाता है, अपने हाथ से उसको खाना खिलाता है, टहलाने के लिए उसको लेकर जाता है, लेकर आता है, बहुत कठिन वक्त ये कुत्ते के साथ गुजारता है, और मैं इसकी मां हूं, ये मुझे 5 मिनट नहीं देता, दिन में 5 मिनट नहीं देता, हम एक ही घर में रहते, तो अदालत इसको पाबंद करे कि ये मुझे 5 मिनट दे दिया, सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट, मुकदमे में उसने यही लिखवाया, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दे क्योंकि मेरा बेटा है। जब ये कुत्ते को इतना वक्त दे रहा है तो मुझे दे दे, कुछ तो दे। तो अदालत ने ये कहा कि 18 साल का ये हो चुका है, लिहाजा हम अदालत इसको इस बात की पाबंद नहीं बना सकती कि ये आपको वक्त दे, और ये फैसला करने में आजाद है, अदालत इसको पाबंद नहीं बनाएगी कि ये अपनी मां को वक्त दे। हां, कुत्ता जाकर जहां तक ताल्लुक है, हुकूक के हवाले से हमारे कानून है, उसके लिए इसलिए ये पाबंद है कि एक साहब अदा कर। ये है वो मुआशरा जिसको हम, जो हम हजरत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा एक जमात जा रही थी वहां से निजामुद्दीन से, और यही औरत या अमरीका के किसी मुल्क में उसकी तशकील थी, तो फरमा बड़ी प्यारी बात फरमाई और बात याद रखने के काबिल फरमाया कि तुम वहां यूरोप वालों की, अमरीका वालों की दुनियावी तरक्की पर राय टपकाने के बजाय उनसे, उनकी दीन से दूरी पर आंसू टपका। वहां तो जा रहे हो तुम उन मुल्क में, यूरोप में या अमरीका में, उनकी दुनियावी तरक्की को देखकर राय टपकाने के बजाय तुम उनकी दीन से दूरी पर और पत्ती पर, अखलाकी पत्ती पर, एक कुत्ते का, ये कुत्ते का ख्याल रखना मां के लिए, कहा नहीं आप नहीं, हम पाबंद नहीं कर सकते, इस पर आंसू टपकाना, राल मत टपकाना उनकी दुनियावी तरफ से। ये है वो माशरा जिसको हम बड़ी बड़ी ऊंची निगाह से देखते हैं कि हाँ भाई ये हाल इसको कहते, ये अवतार है। दोस्तों, जो इस्लाम ने, दीन ने हमें सिखाए हैं, जो अकदार हमें सिखाई है, अगर हम उनके पाबंद नहीं रहेंगे तो मालूम ऐसा हो रहा है रफ्ता रफ्ता कि यही वक्त ना आ जाए, और मालूम ऐसा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो यही वाले कवानीन यहां भी नाफिज हो जाए और बनाए जाए, और हो रहा है ऐसा, बस समझ लीजिए। और वहां यही होता है, शौहर ने 35 साल तक अपने बीवी के साथ रहा, 35 साल के बाद कोई मामूली सी बात पर बीवी ने कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकती, उसने कहा मैं भी आपके साथ नहीं रह सकता, दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और चल दी। और वहां तो यह है कि अगर शौहर ने कोई जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती की, उसको हाथ वाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की तो वो फोन कर देते कि ये हमारे साथ तशद्दुद कर रहे, उल्टा शौहर गिरफ्तार होगा। तो मालूम ऐसे ही हो रहा है कि दीन को छोड़ने की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, और तकवा पर अपने घरों की बुनियाद न रखने की वजह से हम उसी तरफ जा रहे हैं, रफ्ता रफ्ता हम उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो शायद आइंदा हमारी नस्लों में ऐसा ही हो, एक माशरा बिल्कुल यथर पलट चुका हो, उसमें एक कुत्ते का ख्याल रखा जाता हो और मां का कोई ख्याल ना रखा जाता हो, या बाप का कोई ख्याल ना रखा जाता हो। ये मुआशरा होता है, एक कहा वहाँ उनका ताल्लुक भी वहाँ ये खैबर पख्तूनख्वा से था और वहाँ वालों में गैरत ज्यादा, अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों में गैरत का मकसद ज्यादा रखा है। वो चले गए इसी दुनियावी कशिश को देखकर अमरीका चले गए। उस वक्त उनकी शादी भी नहीं हुई थी, वहीं बच्चे हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, और फिर रोते हुए ये बता रहे थे कि मेरी चार बेटियां हैं, एक के यहूदी लड़के से ताल्लुकात हैं, एक के ईसाई से हैं, और इसी तरह उन्होंने गिनवाया, और ये साथ आती हैं, बड़ा मेरा घर है, सब कुछ मैंने बना लिया, दौलत दी अल्लाह ने, खूब डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके, खूब कमाया और बहुत बड़ा घर बनाया। वो लड़कियां आती हैं ईसाई दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और क्या कहते हैं वो आकर, और आंखों तो मैं वो कह रहा है मेरी आंखों के सामने अपने अपने कमरों में चली जाती हैं अपने लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और मैंने एक दफा यूं कह दिया, बेटा ये हमारे, हमें ना करने, ये हमारा है, हमारा दीन ये नहीं कहता, ऐसे मत करो। तो वो लड़की ने जवाब दिया, यू हैव एंजॉयड योर लाइफ, नाउ लेट मी एंजॉय माई लाइफ। आपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर ली अब्बा जान, अब हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। आंखों के सामने वो ये देख रहे हैं क्या कुछ, किस क्या सोच कर गए थे, और ये क्या हुआ, क्या नतीजा हुआ। तो भाई जिस रुख पर हम जा रहे हैं ये सही रुख है। और फिर कोई मुसाफिर जा रहा हो हैदराबाद, मसलन किसी बस में बैठा हैदराबाद जाने के लिए, मारूफ स्टेशन आते हैं, मुसाफिर की आदत होती है देखता है बाहर हो, अगर मारूफ स्टेशन आ रहे हो तो वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ भाई अब ये नूरियाबाद आ गया, अब जानशोरो आएगा, फिर हैदराबाद आ जाएगा। मारूफ स्टेशन, मारूफ बस स्टॉप नहीं आ रहे, स्टॉप नहीं आ रहे, वो जगह ही आ रही जो मारूफ हैदराबाद के रास्ते या लाहौर के रास्ते में या कोई भी मंजिल हो उसके रास्ते की, मारूफ मंजिलें नहीं आ रही, स्टॉप या स्टेशन नहीं आ रहे, तो उसको फिक्र होती है कि कोई मैं किस बस में बैठ जाऊं, किस ट्रेन में मैं बैठ जाऊं। और हमें तो फिक्र भी नहीं हो रही, हमारे तो मारूफ स्टेशन नहीं आ रहे, नमाज की पाबंदी का स्टेशन, आंखों की पाबंदी का स्टेशन, इत्तेबाए सुन्नत का स्टेशन कहां आ रहा है, हमारे घर की सही जिंदगी गुजर जाए उसका स्टेशन, वो स्टेशन हमारे आ भी नहीं रहे और हमें फिक्र भी नहीं, उतनी भी फिक्र नहीं है जो एक मुसाफिर को होती। ये मारूफ स्टेशन नहीं आ रहे, मुझे चाहिए कि अपनी बस बदलो, वो तो बेचैन हो जाएगा, तड़प जाएगा। क्यों भाई, इतनी तड़प है हमारे अंदर, कुछ बेचैनी है हमारे अंदर कि मेरे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, मैं खुद किस तरफ जा रहा हूं, मेरा रुख सही है, हमारा घर किस तरफ जा रहा है, फिर हम अपने अपने पड़ोस में देखें, मुआशरे को देखें, अगर हम गौर करें तो फिक्र पैदा हो ना। तो आज इस दूरी की वजह से ये हालात पैदा हो गए, और अगर हमने अपनी इस्लाह की फिक्र ना की तो बहुत ज्यादा खतरा है कि ऐसा ना हो कि उन्हीं गैरों के रंग में हम रंग दिए जाए। और ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ। जब वो खुद टेढ़े हो गए तो हमने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। أَنُزِمُ كُمُوا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ। तुम क्या समझते हो हम तुमके तुम्हारे ऊपर अपने दीन को थोप दें और तुम दीन को पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ। जब वो टेढ़े हुए हमने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, जाओ किस रास्ते पे जा रहे हो। जब तक हम अल्लाह से नहीं मांगे या अल्लाह हमारी इतला फरमा दीजिए, हमें दीनदार बना दीजिए, हमें तकवा नसीब फरमा दीजिए, दीनदार भी बनाइए, दीनदार बनाने वाला भी बना दीजिए, ऐसा दीनदार बनाइए कि हम दूसरों की दीनदारी का जरिया बनाए। जब तक हम अल्लाह से नहीं मानेंगे ये नहीं मिलेगा, ये दौलत नहीं मिलती, ये दौलत ऐसे नहीं मिलती, ये मांगने से मिलती है, तड़पने से मिलती है। तलब से मिलती है, उसी उन्हीं को वो मिलते हैं जिनको तलब है, उन्हीं को वो मिलते हैं जिनको तलब है, वही ढूंढते हैं जो है पाने वाले। अल्लाह उन्हीं को मिलते हैं जिनको तलब होती है अल्लाह की, और जो ढूंढते हैं वही ढूंढते हैं जो है पाने वाले। जिनको जिनकी किस्मत में अल्लाह को पाना लिखा होता है वही अल्लाह को ढूंढते हैं। तो बस समझ लीजिए कि जब तक हम घर मुआशरा तो बनता है, एक घर से आबाद होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर ये आयतें पढ़कर इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि एक घर से एक औरत ने, अकीमुल उम्मत ने लिखा है, ये हिकायत लिखी है कि एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा कि फौज कैसे बनती है। तो उस दूसरी औरत ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, मेरा शौहर हुआ, तेरा शौहर हुआ, उसका हुआ फौज बन गई। तो एक घर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मात्रा बन गया। तो हर घर की अगर जो बुनियाद है वो तकवा पर रखी जाए तो मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाए। अगर एक एक करके हम मोहब्बत सीख लें उनकी, अगर एक एक करके हम मोहब्बत सीख लें उनकी, तो रफ्ता रफ्ता उल्फत के नगर आबाद हो जाए। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना जो बातें कही गई, कहने वाले को सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको तकवा की नेमत से मालामाल फरमाए, हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दें और हमें अपनी और अपनी औलाद की और सारी उम्मत की फिक्र नसीब फरमाए। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सलीम खान आप नसीम खान सर, मोहम्मद जमील खान, जमील खान आप साहब आपने दुल्हन से इजाब कबूल करवाई, सलीम साहब आप इजाब कबूल करवाई, नसीम खान साहब, जमील अहमद साहब आप दोनों गवाह हैं इस बात के कि इन्होंने इजाब कबूल करवाई, आपकी तरफ से मुझे इजाजत बता दी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب سلمان احمد صاحب میں نے آپ کا نکاح نازنین بنت محمد سلیم خان صاحب کے ساتھ بوکالت جناب محمد شمیم خان اور بدرانی جناب نسیم خان اور محمد جمیل احمد بائیوز مہر مبلغ 30,000 روپے جو کل معجل ہے یعنی فوری ادائیگی کا ہے آپ کے ساتھ کیا آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر. سیدنا محمد اللہ و آلہ. اے اللہ یہ نکاح مسجد میں سنت کے مطابق ہوا ہے, اے اللہ اس میں برکت نصیب فرما دیجیے. دونوں خاندانوں میں آپس میں اتحاد محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجیے. زوجین کو آپس میں اے اللہ تقویٰ کی بنیاد پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان دونوں کو آپس میں محبت کی وہ جھلک اس جھلک کا کچھ حصہ نصیب فرما دیجیے جو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی. اے اللہ ہمیں اپنی شادی غمی شادی خوشی ہر موقع پر اے اللہ اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام فرما دیجیے تام فرما دیجیے. ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان زوجین کو ان حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرمائیے. بغض رکھنے والوں کے بغض سے حفاظت فرمائیے. نظر بد سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر ان کو نصیب فرمائیے. ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اے اللہ بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتی اجمعین. آمین. رحمتك يا ارحم الراحمين.